also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kaun aaya, saath Baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा एंड बाबा टुगेदर
यू आर द ओशन ऑफ लव यू आर द ओशन ऑफ लव
ओम शांति। हमारे अति प्रिय पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो हम सबके एक आदरणीय और हमारे लिए सदा ही बाबा की छवि, बाबा की सूरत, बाबा की मूरत और बाबा शब्द ही कितना अलौकिक है, कितना प्यारा है। जितना ही बाबा शब्द प्यारा है, उतना ही बाबा शब्द में संपूर्ण ज्ञान, सर्वशक्ति, सर्वगुण समाये हुए। बाबा शब्द कितना मीठा है, सब प्यार से क्या कहते हैं, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल व जान से को प्यार से। बाबा ने बच्चों की जो पालना की है वो तो अवर्णनीय है। बाबा ने जो प्यार दिया, वो प्यार की कथाएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ने वो प्यार सिर्फ आदि रत्नों को नहीं दिया, लेकिन हमें भी वही प्यार, वही पालना, वही प्यार की भाषा हमें अभी भी मिल रही है। तो ब्रह्मा बाबा का सारे विश्व की आत्माओं के प्रति क्या भावना रही, मेरे बच्चे सदा सुखी रहे, और सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे। तो बाबा कहते थे ये मेरे बच्चे चैतन्य ठाकुर हैं, जो भक्ति मार्ग में ठाकुरों की पूजा करते हैं। ठाकुरों के लिए जो सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते वो तो पत्थर की मूर्ति है या सोने चांदी की मूर्तियां हैं, वो तो खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं। ये तो मेरे चैतन्य ठाकुर है, वो तो बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। तो बाबा को कितना नशा था, खुशी था। जो भी कितनी भी भारी महंगी चीज हो मेरे ठाकुरों को खिलाऊं। कितना प्यार से बाबा बच्चों के लिए हर एक महंगी से महंगी चीज, बढ़िया से बढ़िया चीज मंगवा के बाबा खिलाते थे, पिलाते थे। रसगुल्ला बाबा को खिलाने की इच्छा हुई तो खास स्पेशल कलकत्ता से हलवाई को बुलाया और खास स्पेशल बाबा ने रसगुल्ला बनवाए। तो ऐसा प्यार करेगा कौन। इतनी याद आती है। नहीं, वो तो ब्रह्मा कुमार था और यहाँ आते ही तो सब ब्रह्मा कुमार बन ही जाते हैं जो भी आएंगे वो। माना हरेक के प्रति बाबा की कितनी भावनाएं रहती थी। बाबा हमेशा हर बच्चे के गुणगान करते रहते थे। बच्चों को कोई शिक्षा देनी होती थी तो बाबा बहुत ही महिमा करके प्यार से ऐसे कहते थे जैसे कि बच्चों को लगता ही नहीं था बाबा ने शिक्षा दी। इतना प्यार भरे, इतना सम्मान से बाबा कहते थे तो सब बच्चों को लगता था कि अभी ये पहाड़ उठा के फेंक दो। इतना बाबा के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान, रिगार्ड रहता था। बाबा हर बच्चे को देखते थे तो जैसे बाबा बहुत खुश होते थे। और कोई बच्चा थोड़ा सा भी नाराज होता था, थोड़ा सा भी मुरझाया हुआ दिखाई देता था तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा बहुत उसको खुशी में, उमंग, उत्साह में लाते थे, डांस करा देते थे। ऐसे थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो बाबा के कदम पर कदम हम रखते जाएंगे तो हम भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता कर्मातीत बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था वो थी जो बाबा देखते हुए भी नहीं देखते थे, सुनते हुए भी नहीं सुनते थे। जैसे कोई समाचार बाबा को सुनाते थे तो बाबा जैसे यहाँ है ही नहीं, ऐसी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में बाबा रहते थे। फिर बाबा कहते थे बच्चे क्या कहा, और बाबा बहुत शॉर्ट में जवाब देते थे और बच्चे संतुष्ट हो जाते थे। पहले तो बाबा के पास आते ही बाबा की वो निराली मस्ती, बाबा का वो रूहानियत, बाबा का वो फरिश्तापन की स्टेज जब देखते ही सब अशरीरी हो जाते थे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते थे। बाबा जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा आभास होता था। बाबा ऐसी मस्ती में रहते थे कि जैसे बाबा खोए हुए हो, बाबा यहाँ है ही नहीं, ऐसा महसूस होता था। बाबा लास्ट में बाबा कहीं जाते नहीं थे, मधुबन में ही रहते थे। और बाबा कभी कभी तो रात भर तपस्या में लीन होते थे। ऐसी कपारी खुशी, नशा, कभी कभी तो बाबा स्वर्ग की दुनिया में खो जाते थे। और कहते थे बच्चे मैं तो कृष्ण हूं ना। जैसे छोटे बच्चे कैसे हरकत करते हैं, कैसे छोटे बच्चे चार पांव से चलते हैं, वैसे बाबा चलते थे। बच्चे मैं तो भविष्य में मिचलू छोटा कृष्ण बनूंगा, विश्व का मालिक बनूंगा। क्या बाबा को देखते ही सबको नशा खुशी आ जाती थी, तो रूहानी नशा वो रूहानी खुमारी बाबा के हर एक बच्चे में देखना चाहते हैं। तो वो कैसे आए हमारे अंदर, उसके लिए बाबा कहते थे कि बच्चे हमेशा अपनी अलौकिक स्थिति में रहो, फरिश्ता स्थिति में रहो, आत्माभिमानी होकर रहो। ब्रह्मा बाबा जो कोई भी आते थे उसको बाबा कहते थे बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तुम ज्योति बिंदु हो, तुम परम धाम के निवासी हो, इस शरीर में तुम पाठ बजाने आए हो। ऐसा कहते ही बच्चे अशरीरी हो जाते थे, क्योंकि बाबा का ऐसा अभ्यास था, ऐसी प्रैक्टिस थी, ऐसी स्थिति में बाबा रहते थे। इसी कारण हर एक बच्चे को बाबा ये अनुभव कराते थे कि बच्चे अब घर के नजारे, अब सत्यु की देवी दुनिया के नजारे बच्चों में दिखाई देने चाहिए, माना बच्चों को दिखाई देना चाहिए। वो जब कब दिखाई देंगे, ऐसी त्याग मूर्त, ऐसी तपस्या मूर्त, ऐसी सेवा की लगन। ब्रह्मा बाबा पुराने शरीर होते भी बाबा हर एक यज्ञ सेवा में भी मन लगाते थे, दिल से बाबा सेवा करते थे। छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, बाबा इस सेवा में लगते थे। कभी बाबा जो गोबर के गोले बनाते थे बॉयलर जलाने के लिए, तो ऐसी मस्ती में जैसे बाबा दृष्टि देते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। तो बाबा कहते हर कार्य छोटा भी करो बड़ा भी करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन योग और सेवा का बैलेंस हो, सेवा करते हुए योग की स्थिति भूल न जाए, सेवा करते हुए योग की स्थिति से नीचे न आ जाए, ऐसी बैलेंस की स्थिति हमारी रहेगी तो नेचुरली हमारे जीवन में ब्लेसिंग बाबा की मिलती रहेगी। तो हम आत्माओं से ब्लेसिंग मिले दूसरों को, और बाबा की ब्लेसिंग हमें सदा मिलती रहे, तो उसके लिए बाबा कहते बच्चे बाप को फॉलो करना है, फॉलो फादर और मदर। किस किस बात में बाबा को फॉलो करना है? बाबा के जीवन चरित्र को देखो, बाबा के हर कदम में पदम। बाबा कहते ब्राह्मण बनना माना बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करना। तो ब्राह्मण बच्चे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो सारे सृष्टि में माना जो सारे कल्प में हमारा ये पार्ट है, ये हीरो पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम जो अभी वर्तमान समय सृष्टि का पहला पत्ता, सृष्टि के आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों का पाठ है। हजार भुजाधारी ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं। हजार भुजाधारी क्यों कहा? क्योंकि शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के हम सब बच्चे, हम उसकी भुजाएं हैं। बाबा कहते थे खुशी में नशे में कि बच्चे, बाबा बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकते और बच्चे भी बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बच्चों को सदा बाबा ने आगे रखा। पहले बच्चे फिर बाप, हर कार्य में बाबा पहले आगे। कोई भी कार्य करते थे तो बाबा हमेशा शुरुआत करते थे तो बच्चे देख कर, अरे बाबा ये कार्य कर रहे, बाबा ये कर रहे। तो बाबा एक बार, बाबा को अंगूठे में पट्टी लगी थी तो देखा बच्चों ने बाबा को अंगूठे में पट्टी लगी, क्या बात है। तो बाबा को, बाबा ने बोला बच्चे रात्रि को बाबा ने देखा तो बच्चों के कपड़े भीग रहे हैं, बरसात आ रही है पहाड़ी पर, तो बाबा जल्दी में उठ करके गए तो बाबा का पांव थोड़ा दरवाजे में लग गया, तो थोड़ी सी खुरच आ गई। तो कैसे बाबा बच्चों की हर माना चीज के लिए बाबा कितना ध्यान रखते थे, यज्ञ की कोई भी चीज वेस्ट न जाए, यज्ञ की कोई भी चीज का नुकसान न होए, बच्चे कितने भी गफलत करे लेकिन बाबा बच्चों का कितना ध्यान रखते थे। हर चीज यज्ञ की सदा ही सब ठीक ठाक रहे, सदा ही भंडारे भरपूर रहे और बच्चे सदा खुश रहे, ऐसा बाबा का रहता था। सदा बाबा कहते थे बच्चे ये अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में ये तुम्हारा बहुत थोड़ा समय है पुरुषार्थ का, और भाग्य कितना बड़ा है, तो इस भाग्य को देख करके बच्चे तुम्हें बहुत नशा और खुशी रहनी चाहिए कि बच्चे थोड़े समय में हम कितना बड़ा भाग्य बना रहे हैं। बाबा का इतना बड़ा व्यापार त्याग किया फिर भी बाबा क्या कहते थे, बाबा ने क्या त्याग किया, बाबा ने तो कौड़ियों का त्याग किया, जबकि उस समय बाबा का व्यापार बहुत नामी ग्रामी हो गया था। उस समय बाबा कई लाखों रुपये का व्यापार करते थे, उस समय लाखों रुपये का व्यापार माना आज कई करोड़ों से भी ज्यादा हो जाता है। फिर भी बाबा कितने निर्माण चित्त और रहम दिल, हरेक के प्रति कल्याण की भावना। डायमंड, हमने भी डायमंड का किया तो जब ज्ञान में आए तो ऐसा लगा कि बाबा तो अभी संपूर्ण बन गए, फरिश्ता बन गए, अभी हमें भी क्या करना है। फिर भी लौकिक रीति से हमारा फर्ज बनता है, हम ज्ञान में चले हैं तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं कहे कि आप सब कुछ छोड़ के चले गए, माता पिता ने जो पालना दी है उस पालना का हमें रिटर्न करना ये हमारे फर्ज है। बाबा कहते ज्ञानी तो बन जाते हैं, योगी तो बन जाते हैं, तो समझदार बन जाते हैं। समझदार माना हर एक बात की समझ कि हमारा फर्ज क्या है। हमारा फर्ज ये होता है कि हमें भी लौकिक जो पालना ली है उसका रिटर्न देना है, हमें भी सब सेटल करना है। हमारे जो बड़े भाई है, छोटे भाई है या मम्मी पापा है, उसने हमारी जो पालना की है उसका हमें उत्तरदायित्व तो देना चाहिए। माना कोई ये न कहे कि आपने ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि नहीं, हाँ उसने तो हमारे लिए सब कुछ किया लेकिन हमने उसके लिए नहीं किया, ऐसा वो समझे। ऐसा न कहे कि हमने इतना किया और उसने कुछ नहीं किया, ऐसा कोई न कहे। एक ब्राह्मण आत्माओं का एक ब्रह्मा कुमार बनने के बाद हमारी ये फर्ज अदा हो जाती है कि हमें लौकिक परिवार की पालना करनी है। बाबा भी कई बच्चों को कहते थे कि बच्चे तुम्हारी जो रचना है उसके तुम जिम्मेवार हो, उसकी तुम्हें पालना करनी है। कई मम्मा को कहते थे मम्मा मेरे को तो सेवा में जाना है, तो मम्मा कहते तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो बोला 5 बच्चे हैं, तो यही तुम्हारी गीता पाठशाला है क्योंकि यही इसको ही तुम्हें पालना करनी है। और कई बार तो बाबा कहते थे कि बच्चे अगर कोई आना चाहते हैं, सेवा में लगना चाहते हैं, तो बाबा उसके लिए नौकर रखवा देते हैं और तुम बच्चे बाबा की सेवा में लग जाओ। इतना तक भी बाबा फरमान देते थे, इतना तक बाबा सेवा के लिए कहते थे कि बच्चे अगर जो निश्चिंत है, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई पीछे देखने वाला नहीं है, माना कोई ऐसा, तो बाबा की सेवा में लग जाओ। एक भाई बाबा के पास आया, बाबा मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। तो बाबा ने फलक से कहा बच्चे बाबा बच्चों की जन्म पत्री को जानते हैं, तुम यहाँ रहो। बाबा कहता है तुम यहाँ रहो। 50 साल की उम्र में 5-6 बच्चे होते भी बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा की बच्चों की जन्म पत्री को जानता है, बच्चे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। बाबा कहते तुम यहाँ रहो। ऐसे तो कैसा बाबा भविष्य जानते हैं, हर एक बच्चों के भविष्य पत्री देख करके बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ रहो। किसी को बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम नौकरी करो, तो भाग्य विधाता है तो हर एक का भाग्य को जानता है। एक बहन को बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हारी उम्र तो 25 साल की है लेकिन योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। देखो जैसे लौकिक में तो उसको कहा था कि तुम 25 साल तक जिएगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी कहा कि बच्चे तुम बाबा की याद में रहेगी, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। आज उसकी 80 साल की उम्र है और सब सेवा इतनी सेवाएं कर रही है, इतनी भाग्य बना रहे हैं। कैलाश दीदी गांधीनगर, तो कहते थे बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। तो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें पढ़ाएगा। तो उस समय बाबा को फिर बाबा के फिर फोन आया कि बाबा उस बच्ची को भेज दो। तो फिर बोला बाबा मैं तो जाऊँगी, जयपुर जाऊँगी, वहाँ मैं कैसे पढ़ूँगी। तो बाबा ने कहा डायरी पन लेकर के एक जगह बैठ जाना, बाबा तुम्हें पढ़ाएगा। ट्रांस में बाबा ने पढ़ाया, मुरली पढ़ना सिखाया। तो भाग्य विधाता बाबा कैसे हर एक बच्चे की जन्म पत्री को जान के हर बच्चे को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो बड़ी दीदी के साथ बाबा रहते थे, मना बाबा के साथ दीदी रहती थी। और दीदी ने एक बार बाबा को कहा कि बाबा तो ब्रह्मा बाबा रमेश भाई के साथ एक बार बैठे थे तो बाबा ने कहा कि बाबा हर बच्चे के भाग्य को जानते हुए भी हर एक बच्चे अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते हैं, बाबा किसी को जो चाहे वो दे नहीं सकते, हर एक का अपना पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ से हर एक अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। बाबा किसी को भी जो श्रीमत देते हैं तो वो भी बाबा उसकी अवस्था और उसके पुरुषार्थ के अनुसार ही बाबा उसको श्रीमत देते हैं। कई बच्चों को बाबा कहते थे बच्चे तुम्हें नौकरी करना है, और कई बच्चों को बाबा कहते नहीं बच्चे तुम्हें नौकरी नहीं करना है। क्यों? हर एक बच्चे की अवस्था के ऊपर। कई बच्चों को बाबा कहते थे तुम बच्चे अपने ऑफिस में चाय पी सकते हो, कईयों को बाबा कहते थे बच्चे नहीं तुम्हें नहीं चाय पीना है, कोका कोला नहीं पीना है, और कई बच्चों को तो बाबा कहते थे बच्चे भले कोका कोला पियो। गोपाल भाई ने बाबा को जैसे दादी ने बोला कि बाबा ये तो कोका कोला पीता है, तो बाबा ने कहा भले बच्चे को पीने दो। माना बाबा हर एक बच्चे की परख के ऊपर बाबा उसको राय देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मम्मा ने बाबा की राय को ज्यादा समझा और उसी पुरुषार्थ उसी प्रकार पुरुषार्थ किया तो वो आगे चली गई। सबके संस्कार तथा प्रारब्ध एक समान नहीं हो सकती, इसलिए सबके लिए एक समान कानून भी नहीं होना चाहिए। परमात्मा शिव की श्रीमत के साथ साथ ब्रह्मा की मत भी प्रसिद्ध है। साकार बाबा मत देते समय बहुत ही सोच समझकर श्रीमत देते थे। श्रीमत के पीछे बहुत ही गुह्य रहस्य होता था। तो बाबा ने एक भाई को कहा कि आप उड़न खटोला हो। तो जैसे बाबा आज्ञा करते थे उसी समय वो आ जाते थे। तो बाबा कहते थे कि उड़न खटोला जैसे बाबा के पास आ जाते हो वैसे ही अभी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ फरिश्ता बनने में भी उड़न खटोला जैसे बनना है। जैसे वो अपना मोहिनी बहन थी तो बाबा उसको कहते थे ये देव कन्या है, शिव शक्ति है, तुम्हें तो बिल्कुल निर्भय बनकर भूली भटकी मनुष्य आत्माओं को बाप की पहचान देने का कार्य करना है। बच्चा निर्बंधन होकर ईश्वरीय सेवा में लग जाएगी। बच्ची निर्बंधन होकर ईश्वरीय सेवा में लग जाएगी। अपकारियों पर भी उपकार करना है। ईश्वरीय नियम को कभी तोड़ना व छोड़ना नहीं है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। किसी का अवगुण अथवा दोष चित पर नहीं रखना है। यदि किसी का कोई संस्कार ठीक न लगता हो तो बाबा को बताओ, बाबा स्वयं उसे सावधानी देंगे। तुम अपनी अवस्था को नीचे ऊपर मत करना। बाबा ने मुझे देवी मर्यादा में रहने तथा आसुरी मर्यादा छोड़ने की शिक्षा दी। तुम किसी से कोई चीज मत मांगना, मांगने से मरना भला। तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर तो दाता है, तुम्हें जो कुछ चाहिए बाबा से ले लो। कभी किसी काम के लिए ना मत करो, ऐसा कहना नास्तिक है। मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता, ये कहकर शक्तिहीन मत बनो। तुम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, तुम अपनी हिम्मत और बाप की मदद से हर कार्य कर लेंगे। हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, यह सदा याद रखना। तुम सत्य बाप के साथ सदा सच्ची होकर चलना, सांच को आंच नहीं, सच तो बिठो नच, सच्चे दिल पर साहेब राजी रहेगा। यदि नियत साफ होगी तो मुराद अवश्य हासिल होगी, इसलिए अंदर बाहर एक होना चाहिए। जो तुम्हारी मनसा में हो वही वाचा और कर्मणा में हो, इससे कोई भी माया की बीमारी नहीं लगेगी, अवस्था सदा ऊंची और हर्षित मुख रहेगी। बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है, यदि भूल करके छिपाएंगे तो भूल बढ़ती जाएगी और धर्मराजपुरी में 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। धर्मराज बाबा का बच्चा बनकर अधर्म का कोई काम मत करना, वरना सजा भी मिलेगी, मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएगा। मनुष्य को उचित सम्मान देकर स्नेह से ही ज्ञान देना चाहिए, योग युक्त होकर कार्य नहीं किया वरना भूल होती ही नहीं। योग युक्त होकर कार्य नहीं किया वरना भूल होती ही है। बाबा अधिक समय झोपड़ी में एकांत में गहन मग्न स्थिति रूपी गुफा में लीन रहते थे। इस अंतिम वर्ष में बाबा निरंतर योग की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गए थे। अंतिम दिनों में बाबा यहीं पर फरिश्ते नजर आने लगे थे। सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार व प्रत्यक्ष ब्रह्मा बाबा में कोई अंतर नहीं लग रहा था। दूर से देखने पर पता लगता था कि बाबा के पग धरती पर नहीं है, क्योंकि सचमुच बाबा धरती के आकर्षण से दूर वतन में रहने लगे थे। दधीची ऋषि की अंतिम स्थिति, जिसने अपनी हड्डियों को पूर्णतया यज्ञ में स्वाहा करके फरिश्ता स्वरूप प्राप्त किया था, मैंपन के संपूर्ण त्याग के कारण नंबर 1 को प्राप्त हुआ। त्याग तो अनेक वत्सों ने किया, परंतु वर्णन तो दूर, बाबा को तो अपने त्याग का एहसास भी नहीं था। बाबा कहा करते थे कि मुझे तो कौड़ियों के बदले स्वर्ग की बादशाही मिल गई। रूहानी आकर्षण से संपन्न वे किसी को अपनी ओर आकर्षित भी नहीं होने देते थे। वे कहा करते थे कि देहधारियों को याद करोगे तो पाप के भागी होंगे। बाबा अपना स्वरूप इतना साधारण रखते थे जो कोई समझ भी न पाए कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, परंतु उनकी शालीनता व महानता प्रत्यक्ष उनके होवनहार विश्व महाराजन की परछाई फेंकती थी। मान शान की बात तो उनसे कोछो दूर थी। बाबा अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे। कई बार हम बाबा को कहते थे, बाबा इस टूटे फूटे मकान छोड़कर आप नए मकान में रहो, तो बाबा कहते थे, बच्चे शिव बाबा पुराने मकान पुराने तन में पुरानी दुनिया में आए हैं, बाबा तो पुराने मकान में रहेंगे। बाबा कहते थे, बाबा तो अब बच्चों के ओबीडियंट सर्वेंट है। तो सर्वेंट कहाँ रहता है, झोपड़ी में रहता है। तो बाबा का इतना त्याग था, इतनी समर्पणमय था। तो ऐसे हमारे मीठे बाबा, ऐसे हमारे प्यारे बाबा को हम फॉलो करते रहे, तो फॉलो फादर करते रहेंगे तो हम भी बाप समान फरिश्ता संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। बाबा की जो अंतिम अवस्था थी, बाबा की जो संपूर्ण अवस्था थी, बाबा की जो फरिश्ता स्थिति थी, बाबा की याद की यात्रा की मस्ती थी, वो मस्ती, वो रूहानियत, वो फरिश्तेपन को हम याद करते रहें तो हम भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा की याद हमेशा रहे, बाबा भूले ही नहीं। इसके लिए बाबा को एक बार एक भाई ने कहा, बाबा मुझे तो बाबा की याद नहीं रहती है, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे क्या कार्य करते हो? तो बोला बाबा मैं कलर करता हूँ। तो बाबा कहते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो कहते मेरा तो याद का चाट बढ़ गया। माने बाबा कहते थे अगर मन से याद नहीं रहे तो मुख से भी बाबा बाबा करते रहो। जगदीश भाई अंतिम समय में ये भले दर्द होता हो कुछ भी होता हो लेकिन फिर भी बाबा याद ऐसे करते थे, मीठे बाबा प्यारे बाबा ज्ञान के सागर बाबा खुशी के बाबा सागर फरिश्ता बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा ऐसे मुख से कहते थे। और हमेशा कोई भी आते थे तो ऐसा लगता था जैसे उसको कोई तकलीफ नहीं है। हमेशा ये रहता था कि मैं अपना हिसाब किताब यहीं चुप्त करूं, धर्मराज की सजा नहीं भोगनी है। तो धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए बाबा कहते थे यहीं हमारे हिसाब किताब चुप्त करना है। तो चुप्त करने का दो तरीका है, एक से प्यार से स्वीकार चुप्त करना है, दूसरा नाराजगी से। तो बाबा कहते तुम बच्चे नाराज क्यों कहते हो? जब कार्य किया है जो भी कर्म किया है वो तो खुशी से किया है, तो चुप तो भी खुशी से करना है। तो मम्मा को किसी ने कहा मम्मा आप इतने खुश रहते हो क्या बात है इतनी तकलीफ में भी? तो मम्मा कहते मुझे जो दर्द है उससे ज्यादा खुशी है कि मैं बाबा की याद में अपने हिसाब किताब चुप्त कर रही हूँ, जो मुझे धर्मराज की सजाओं भोगनी न पड़े, मुझे यहीं हिसाब किताब चुप्त करना है। तो ब्राह्मण बनने के बाद हमारे चेहरे से हमारे चलन से हमारे व्यवहार से किसी को ये न दिखाई दे कि ये दुखी आत्मा है, ये अशांत है, ये परेशान है, ये बेचारा है, इसका कोई नहीं है, ऐसा न लगे। बाबा कहते थे पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, काम क्या बाकी रहा। तो ऐसी रूहानी मस्ती रहे, ऐसा बेफिक्र बादशाह रहे तो दिन दो गुना रात चौगुना हम उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। फिकर हमारी सब बाबा ने ले ली, अभी हमें बेफिक्र बादशाह बनना है, फिक्र से फारिग रहना है। और हमें तोड़ी नहीं है क्या जाने वाले हैं ना उन लोगों के लिए? तो हमारी वो स्थिति हमारी वो बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति हो जब तुम उड़ती कला में रहोगे तो परिस्थिति कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी और तुम उड़ते ऊपर उड़ते रहोगे। तो परिस्थिति तुम्हें ऊपर से क्या दिखाई देगी? छोटी सी चींटी भी नहीं दिखाई देगी। तो परिस्थिति परिस्थिति नहीं करना है, लेकिन हमें बाबा की स्थिति को याद करना है, स्वस्थिति में स्वस्थिति को याद करना है, हमारी संपूर्ण स्थिति को याद करना है, वही फरिश्ता स्थिति को कर्मातीत स्थिति को बीज रूप स्थिति को उस स्थिति में स्थित होना है और उसका आनंद लेना है और उसमें हमें खो जाना है। जब ऐसी ऊंची स्थिति में रहेंगे तो परिस्थितियां कैसी भी हो कैसा भी प्रश्न हो उस प्रश्नों से पार हम पार ब्रह्म में अपना ऐसा अनुभव करेंगे बाबा के साथ, तो बाप समान वो स्थिति निराकार स्थिति फरिश्ता स्वरूप की स्थिति वो अलौकिक स्थिति वो दिन दूर नहीं, लेकिन हमें अभी वो स्थिति का अनुभव करते रहना है। उस स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें बहुत ही अभ्यास और प्रैक्टिस करते रहना है। ओम शांति।